તારીખ 11-10-1994 શ્રી સમયસર કળશટીકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 94
लेकर के अनंत काल से संसार में परिभ्रमण जन्मोपरण करता हुआ होता था उसका जन्म मरण छूट जाता है और आगे जाकर के तो सिद्धार्थ में विराजमान हो जाता है, तीन लोग का नाश हो जाता है। काम करना तो कोई ऐसा काम करना के जगत का सर्वोत्कृष्ट काम हो, ऐसा करना। फालतू के छोटे छोटे काम से क्या मतलब है, तुम काम ही करना है और काम करने में ही अपनी शक्ति का खर्च करना है तो फिर ऐसा काम क्यों नहीं करें हम कि जिससे जगत का सर्वोत्कृष्ट कार्य संपन्न हो, ऐसा कार्य हम क्यों नहीं करें। मामूली कार्य से क्या फायदा है, उसकी कीमत भी क्या है। जैसे कोई कहते हैं कि हमारे गांव में या हमारे शहर में सिटी में ये सबसे बड़ा आदमी सबसे मुखिया है, तो कोई कहेंगे कि हमारे स्टेट में ये सबसे मुखिया है, प्राइम मिनिस्टर है। कोई कहेंगे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है या, पर इसके पीछे लोग लगते हैं ऐसा मुखिया होने के पीछे। तो कोई कहेंगे कि भाई सारे देश में नहीं सारे विश्व में इंटरनेशनल फिगर है, क्या मामूली आदमी नहीं है, उसकी ख्याति कीर्ति सारे विश्व में फैली हुई है। फिर भी ये हमारा विश्व है तो भारत खंड का एक छोटा सा टुकड़ा है, छह खंड में एक खंड है इसका एक टुकड़ा है, आर्य खंड का एक टुकड़ा है। छह खंड होता है चक्रवर्ती में दो, इसमें आर्य खंड होते हैं आर्य खंड होते हैं, इसमें आर्य खंड का एक टुकड़ा को हम सारा विश्व कहते हैं। आज कई लोग पूरा विश्व है पूर्व पश्चिम लेकर के, तो उसमें कोई ख्याति मिलती है तो मानते कि सबसे बड़ा आदमी हो गया। इससे भी एक बड़ा स्थान है सिद्धार्थ, तीन लोग का नाथ बनना बनना है तो ऐसे काम को क्यों हाथ में नहीं है, मामूली काम को क्यों हाथ में नहीं, शक्ति का ही खर्च करना है तो जगत का सर्वोत्कृष्ट कार्य क्यों नहीं करे। पर कर सकते हैं, जब हम सकते हैं तो क्यों नहीं करें, ये बात है। इस तरह से आत्मा और कर्म को जो ज्ञान की फरियाद को अंतर्मुख में ले जा करके भिन्न भिन्न करते हैं, भिन्न है उसको भिन्न अनुभव करते हैं। जो अभिन्न अनुभव झूठा अनुभव मिथ्या अनुभव है उसको छोड़ करके जैसा है वैसा भिन्न भिन्न अनुभव करते हैं, तो इसका फल स्वरूप जन्म मरण का परिभ्रमण मिटता है, संसार में सर्व दुख का नाश होता है और सिद्धाली में जगत के तीन लोक का नाश का पद में विराजमान करता है। ऐसा एक कार्य होता है, तो इस प्रकार से होता है। क्या कहते हैं आचार्य कि चैतन्य पूरे आत्मानं मग्नं कुर्वन्ति, आत्मा को अपने आप में चैतन्य पूर्व में निमग्न डुबा देती है, चैतन्य समुद्र में खुद स्वयं डूब जाता है। ज्ञान अंतर्मुख जब होता है और स्वरूप की लीनता को शुद्धोद्योग से प्राप्त करता है, तभी अपने चैतन्य समुद्र में चैतन्य पूर्व में वो डूब जाता है। एकाकार चैतन्य ही चैतन्य अनुभव में आता है, प्रदेश प्रदेश से हर प्रदेश से चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। तो ये प्रज्ञा शनि का भिन्न करने के कार्य में यही उपलब्धि है, इसके इस प्रकार के उपलब्धि है कि आत्मा चैतन्य पूर्व में डूब जाता है और सारे संसार का नाश होने का एक कारण यहाँ उत्पन्न हो जाता है। स्वपर स्वरूप ग्राहक ऐसा जो प्रकाश गुण उसका पूर्व मन श्रीकाल गोचर प्रवाह इनका नशा का ऐसा स्वपर प्रकाश गुण रहता है। जीव द्रव्य को एक वस्तु रूप ऐसा पाल है वो बिना छेने अपने स्वरूप को एक रूप पाल लेती है, ग्रहण कर लेती है, उसको वास्तविक साधना कहने में आती है। यही साधना का स्वरूप है, बाकी जो साधना के नाम पर जो भी चलता है वो तो वास्तव में कोई साधना नहीं होती। आत्मा अपने चैतन्य पूर्व में डूब जाए, अपने निराकुर शांति के सागर में से बाहर ही नहीं निकले, लीन हो जाए, यही वास्तविक साधना है, उसी को साधना कहते हैं। बाकी सब साधना की बात है। और दूसरी ओर जो जीव द्रव्य है उसको आत्मा उसको भावास इस प्रकार है, इसका भावास लिखा है कि शुद्ध चेतना मात्र जीव का स्वरूप है ऐसा अनुभव गोचर आता है। स्वयं का स्वरूप शुद्ध चेतना मात्र है ऐसा अनुभव गोचर आता है। चैतन्य चैतन्य प्रदेश प्रदेश से अपना स्वयं का चैतन्य रूप में एकाकार चैतन्य रूप में अनंत चैतन्य को स्वयं अपने रूप में अनुभव करने लगता है। और रागालीपना में नियम से बंध का स्वभाव है ऐसा साधती है। तो प्रज्ञा शनि रागादि भाव चाहे वो मानसिक शांति रूप हो फिर भी उसको नियम से बंध का स्वभाव है, ये मानसिक शांति भी नियम से बंध का स्वभाव है। तो मानसिक शांति तीव्र आकुलता के बराबरी में शांति दिखती है, लेकिन वही मानसिक शांति आत्मिक शांति के साथ तुलना करने में वो अशांति दिखती है। आत्मा मुक्त स्वरूप दिखने में आता है, ये बंद स्वभाव दिखने में आता है, बंद रूप दिखने में आता है, ऐसा होता है। वास्तव में मानसिक शांति वो शांति नहीं है, अशांति है। वो तो उन लोगों के लिए शांति है कि जिसको बहुत आकुलता और अशांति वर्तती हो, उन लोगों के लिए मानसिक शांति को शांति बोली जाती है। वास्तव में वो अशांति है। उस अशांति को नियम रूप से मंद का स्वभाव है, ऐसा प्रज्ञा श्रेणी साधती है, क्योंकि खुद निराकुल आत्म शांति रूप है। प्रज्ञा श्रेणी खुद तो निराकुल रूप आत्म शांति है, उसके साथ तुलना हो जाती है, ये तो अशांति है। शांति यह है, ये अशांति है। अनुभव से करते जो सम्यक ज्ञान है, आत्माभिमुख ज्ञान के पर्याय है, तो निराकुल शांत रूप से वेदन में आता है। तो पर्याय निराकुलता से एकदम शांत स्वरूप वेदन में आती है। इसके साथ जो अंतर्गल्प है, चाहे वो आत्मस्वरूप का विकल्प हो, सूक्ष्म विकल्प हो, अति सूक्ष्म विकल्प हो, फिर भी उस विकल्प की दिशा आत्मा की ओर नहीं है। ज्ञान की दिशा अपने स्वरूप की ओर है, विकल्प की दिशा मन की ओर है, मैंने परामुख है। एक तो वहां से वो डिस्टिंग्विश होती है। ये दोनों शांति कहां से अलग पड़ती है, तो एक तो दिशा से अलग पड़ती है। जो प्रज्ञा श्रेणी रूप ज्ञान के पर्याय है, ये अंतर्मुख ज्ञान के पर्याय है। इसके साथ सूक्ष्म रूप में भी चलने वाला आत्म स्वरूप का विकल्प है, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परमानंद रूप हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ऐसा जो सूक्ष्म विकल्प है, उसकी दिशा भी परान्मुख है, पड़ते पड़ती है। फिर तो वहां से बहुत बड़ा अंतर मालूम पड़ता है, उनकी सूक्ष्म दिशा है। इसलिए दूसरा कि जो ज्ञान की पर्याय है, उसमें निराकुल शांति है, कषाय का अभाव रूप शांति है, क्योंकि विकल्प में कषाय कण जीवंत है। क्या इसके साथ चलने वाले सूक्ष्म विकल्प में भी कषाय का कण जीवंत है? क्या अल्प जहर को हम जहर नहीं समझ करके कभी उपेक्षित उपेक्षा किया करते हैं क्या? ये तो एक जहर का बुद्ध है, इसमें क्या हो गया? हमारे यहाँ रसोई तो दसवीं आदमी की बनती है, इसमें एक बुद्ध से क्या होने वाला? तो जहर का बुद्ध को क्या हम इस बोतल को रसोई करते वक्त छुएंगे भी नहीं? तो जहर की बोतल होती है जिस पर लिखा है पॉइजन, तो उसको हम छुएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी खाना खाने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है। अल्प लग जाए तो कोई अल्प का इतना भी सावधानी रखना चाहिए कि उपेक्षा रखनी चाहिए कि कहीं थोड़ा भी जहर नहीं लग जाए। इसलिए जो कषाय है, चाहे वो तो इसी ग्रंथ में आएगा सर्व विश्व ज्ञान अधिकार में, जो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण शब्द लेकर के आचार्य श्री ने बात किया है कि प्रतिक्रमण का विकल्प है अपने दोष से, वर्तमान में चलने वाले अपने दोष से निवर्तना, पीछे हट जाना, इसका जो विकल्प, उसको क्या बोला आचार्य श्री ने? ये विश्व कुंभ है। विष नहीं बोला, जहर का घड़ा भरा है, ऐसा बोला। प्रतिक्रमण विष कुंभ है और निर्विकल्प आत्म परिणति है, तो अमृत कुंभ है। दोनों अपने आमने सामने रख लिया है, इसको एक प्रतिक्रमण बोला है। क्या ये सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार का नाम है? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। तो सर्व विशुद्ध ज्ञान कैसा है? जो आत्मज्ञान रूप होता है, आत्म शांति रूप होता है, वो अमृत कुंभ है, वो अप्रतिक्रमण स्वरूप है। और प्रतिक्रमण का विकल्प जो है वो विश्व कुंभ है, ऐसा बोला है। अप्रतिक्रमण दो प्रकार का नाम ऐसे चर्चा चलाई है कि एक तो जो अपने दोष से प्रतिक्रमण ही नहीं करता, संसारी जीव और बचाव करता है, जो उसका पोषण करता है, जो उसकी रुचि को बढ़ाता है, उसको अप्रतिक्रमण बनता है। इसके सामने आचार्यों ने प्रतिक्रमण का उद्देश्य दिया कि तुम अपने दोष का प्रतिक्रमण कर लो, पीछे हट जाओ। जब ये विकल्प चालू हुआ तो कहते हैं कि ये विष्णु है। अप्रतिक्रमण तो वैसा है कि जो आत्मस्वरूप में चला जाए वो अप्रतिक्रमण है। कहने का क्या तात्पर्य? क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म, अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, उच्च स्तर का शुभ भाव है, पुण्य भाव है, उसका कषाय परिणाम है, उसमें आत्मा की शांति नहीं है। कषाय के परिणाम में आत्मा की शांति नहीं है। इसकी जाति अशांत रूप है, उसका स्वाद भी अशांत रूप है, और हमारा जो चैतन्य पूर्ण आत्मा, उसमें निमग्न होने वाले हमारे परिणाम, तो परम शांति का धाम में, परम चैतन्य पूर्व समुद्र में डूबने वाले शांत परिणाम है। तो बचना तीत है, कितने भी महिमा करे तो महिमा करते करते तीर्थंकरों ने भी ऐसा कहना पड़ा कि ये वचनातीत है, उसको नहीं कह सकते। दिव्य धनी में भी वो ताकत नहीं है कि उसको कह सके, उसको दर्शा सके, बता सके पूरा पूरा। इसको पहले भी संतोष करने का एक साधन है। हमारा जो ज्ञान सामान्य है, उसमें जो ज्ञान निवेदन है, यही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है। लेकिन हमको वो बात को पर्याय उनको वो संश मालूम नहीं पड़ता है, वही दिक्कत है तो सही लेकिन तिरोभूत है। जैसे दवा में बड़ा टोपिया भी नहीं दिखता है, भाव से बनाते हैं बड़ा टोपे में 10-50 मान जीने वाले हो, बड़ा टोपिया में रखते हैं तो धुआं उतना निकलता हो चूल्हे में से, तो गीले लकड़े हो, गीले छाने हो, कहीं तो उसमें ना है तो टोपिया नहीं दिखता है, इतना बड़ा टोपिया भी नहीं दिखता है। लेकिन है तो सही नहीं है, इसका नहीं दिखता है इसका मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो सही। अगर हमारे पास उसका नमूना नहीं होता, उसका सैंपल नहीं होता, तो हमको प्रतीत आएगी आती कहाँ से, उसको विश्वास कहाँ से आएगा? इसलिए कृपालु देव ने 751 में दूसरा संक्षिप्त का ऐसा बात किया, अनुभवांश से प्रतीति परमार्थ की स्पष्टतया, स्पष्ट रूप से, धुंधली नहीं, स्पष्ट रूप से आती है। ऐसा ही संवेदन ज्ञान में वेदन है, वैसा ही हमारा स्वरूप है, ऐसा विश्वास निर्णय के साथ पैदा होता है, पहचान के साथ पैदा होता है, खरी पहचान आ जाती है। तो कहते हैं कि यही सम्यक ज्ञान का बीज ज्ञान है, यही ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का बीज ज्ञान है और यही केवल ज्ञान का भी बीज ज्ञान यही है। वह केवल को बीज ज्ञान ही कहे निज को अनुभव बदला ही है, केवल ज्ञान का बीज बोला है।
तो मेरे को तो बात करने के लिए अनुभव जो है
उपयोग रूप से निर्विकल्प अवस्था नहीं हुई है, परंतु वो ज्ञान सामान्य ज्ञान वेदन है, वो स्वयं स्वरूप से ही निर्विकल्प है। अगर वो निर्विकल्प अंश नहीं होता तो परिपूर्ण निर्विकल्प स्वरूप की पहचान आती भी कहां से? हमको परिचय विकल्प का है, विकल्प से हम अच्छी तरह परिचित है ना? इसलिए निर्विकल्प स्वरूप हमारा कैसा होगा इस विषय में हम पूरे पूरे अंधेरे में खड़े हैं, अनादि से। अनादि से इस विषय में अंधेरा चल रहा है। शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा निर्विकल्प है, हमारे गुरु भी कहते हैं कि आत्मा निर्विकल्प है, लेकिन निर्विकल्प माने कैसा? तो जैसा शांति का अकषाय परिणाम का अकषाय भाव का वहां सैंपल है, नमूना है, वैसे निर्विकल्पता का भी वहां नमूना है, वैसे प्रत्यक्षता का भी वहां नमूना है, और वेद वेदक भाव से अंतर्मुखता का भी वहां नमूना है, और वेदन का भी वहां नमूना है। पूरे के पूरे चारों फैक्टर का नमूना होने से पूरे आत्मा की पहचान आ जाती है, प्रतीति आ जाती है कि ऐसे ही हम हैं। इसलिए सविकल्प दशा में निर्विकल्प स्वरूप की पहचान कैसे हो सकती है, ये प्रश्न वहां नहीं रहता है जिसको पहचान होती है। समय सार की तौर गाथा में टीका में अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि जैसे आकाश निरालंब निरपेक्ष है, उसके किसी का आधार की खंभे की जरूरत नहीं है, वो भी टूट पड़ने वाला नहीं है आकाश, उसी तरह की हमारी आत्मा भी निरालंब निरपेक्ष है, किसी के आधार से हम नहीं जीते, हमारा जीवन किसी के आधार से नहीं है, न पैसों के आधार से है, न शरीर के आधार से है, न खान पान के आधार से है, न हवा पानी के आधार से, न श्वासोत्पाद के आधार से भी है, किंतु तो प्राण है सब। हमारा चैतन्य प्राण का जीवन अनादि अनंत जीवित शक्ति के कारण से है, अनंत का अनादि अनंत जिंदा रहने की हमारे शक्ति बेहद शक्ति है, यह इससे जिंदा रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जब ये बात है, जब आधार अपना आता है स्वभाव का, तो प्रतीत आती है, अवलंबन से प्रतीत आती है कि मैं ऐसा ही हूं, कि स्वविकल्प दशा में निर्विकल्प अंश के अनुभवांश से वेदन से प्रतीत आती है, पहचान होती है। अगर ऐसा नई परिस्थिति होती तो किसी को मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने की जो बारी है, खिड़की है, वही मिलने वाली नहीं थी। एक खिड़की है तो वो खिड़की ऐसी है कि वो हमेशा हमेशा खुली रहती है, आबाद गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा निरंतर सदा ही अनुभव में आता रहता है। का नाम स्वरूप निश्चय है, स्वरूप की पहचान है, जो स्वविकल्प दशा में अनुभूति है उसको पहचान कहते हैं, या सम्यक्त्व का अंग कहते हैं, सम्यक्त्व का अनन्य कारण भी कहते हैं, और उसको विज्ञान भी कहते हैं। यहां से परिणाम की दिशा बदलती है। सबसे पहले यहां से परिणाम की दिशा बदलती है, पर दिशा बदलती है तो दशा उपयोग की भी बदल जाती है। जिसकी दिशा बदलेगी उसकी दशा भी बदलेगी। तत्व मेरे लिए यहाँ से होता है और तत्व मेरे लिए ही अनुभव का कारण है। तो 144 में कहा कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान द्वारा मैंने ज्ञानी के वाणी के निमित्त द्वारा श्रुत ज्ञान कहते हैं। ज्ञान स्वभाव में आत्मा का निर्णय करना, निश्चय करना, फिर मत ज्ञान और सिद्ध ज्ञान स्वरूप सम्मुख होकर के अनुभव में पक्षांतिक्रांत होकर के आएगा। बहुत जरूरी है, उसमें उपयोग संकल्पात्मक होता है, निर्णय के काल में अनुभवांश है, उसका अंदर स्वीकृत दशा होती है, स्वीकृत दशा होती है। अपने पास गुरुदेव के वचनामृत है, वचनामृत का किताब है जो नंदेश्वर जिनालय में खुदा हुआ है, गुरुदेव के किताब है। उसमें वो बातें या शताब्दी उनको आत्मधर्म का गुरुदेव के शताब्दी के साल में निकला हुआ विशेषांक है, कितना उसमें 144 का कथा प्रवचन है। उस प्रवचन में ये सब बात खुली है, स्वरूप निश्चय कैसे होता है, बहुत अच्छी तरह खुली है। और ये प्रवचन हुआ है 1998 में राजकोट में ये प्रवचन हुआ है। तो 52 साल हो गया है प्रवचन हुआ है उसको, 52 साल पहले वो बात कही है गुरुदेव ने। और ये प्रवचन झेला है कुछ बैन श्री ने, और लिखा हुआ उनका है जो 2000 के साल में प्रकाशित हुआ है। समय साल प्रवचन भाग 3रा या 4रा भाग है उसमें, उस प्रवचन शताब्दी युद्ध में लिया है उसी प्रवचन को, उसमें वो बात नहीं आई। वो प्रवचन रचना कर टेप पर से लिखा गया है, और ये टेप नहीं थी उस जमाने में, तो मैं जेल लेती थी उसका, उतना शोक क्षमता कर 1 घंटे का प्रवचन सुन ले और घर घर में आकर के उसको पूरा लिख ले 1 घंटे का प्रवचन, उतना ग्रेस्पिंग था जमाने में। तो टेप थी नहीं, उसका उतना उपयोग था प्रवचन में, 1 घंटे के प्रवचन को सुने और घर आकर के वो 1 घंटे के प्रवचन को लिख लें, कैसे कहने खास खास मुद्दे की बात उसको आई। जिसको संस्कार मिला नहीं हो उसको तो प्रत्यक्ष ज्ञानी की वाणी के अलावा लाभ होने वाला नहीं, टेप से भी नहीं और वीडियो फिल्म से भी नहीं। क्या टेप से तो नहीं, वीडियो फिल्म हो तो भी नहीं। क्या मित्र भावी बात हो रही है कि टेप में तो चेष्टा नहीं दिखाई देती, टेप में तो चेष्टा नहीं दिखाई देती, लेकिन वीडियो फिल्म में तो दिखाई देती है। तो इससे लाभ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि वहां जागृत चैतन्य की उपस्थिति नहीं है, ये बात है, यही कारण है। अस्थि नास्ति में कितना बड़ा अंतर है, अस्थि नास्ति में कितना बड़ा अंतर है कि एक आदमी सोया हुआ है वो तो जिंदा है या मुर्दा है, इसके ऊपर उसकी अस्थि नास्ति है। अगर वो जिंदा है तो भले ही सोया रहे, कोई आपत्ति नहीं है, सोने दो उसको। पैर वो हिलता नहीं है, श्वासोश्वास से पता चल जाता है, अरे क्या बात है कि सोया तो था, हिलता नहीं है, क्या बात है, इसकी नाश्ते दिखने में आती है, शरीर तो लेटा हुआ है, नाश्ते दिखने में आती है, कितना अंतर है, एक बड़ा शौक ले जाए लग जाए, इतना बड़ा अंतर है हस्ते नाश्ते में। वैसे आकृति तो वो की वो है, वीडियो फिल्म में आकृति तो वो की वो है, लेकिन वहां जीवन नहीं है, वहां चैतन्य की नास्ती है। अस्थि होती है तो बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ा अंतर है। इसलिए ज्ञानी का प्रत्यक्ष योग का महत्व जिसने समझा उसका बेड़ा पार हो गया, जिसने इस महत्व को नहीं समझा यानी परोक्ष रहकर के भी तो कोई समाधान कर लेते हैं कि नहीं हमारे लिए तो परोक्ष नहीं है, तुमको ये बात समझ में शायद नहीं आएगी, ये बात उनको समझ में नहीं आएगी कि प्रत्यक्ष योग का महत्व क्या है। और जब हम परोक्ष को भी समाधान करके ऐसे बोले कि हमारे हृदय में तो प्रत्यक्ष ही है, हमारे हृदय में विराजमान है, हमने हृदय में से नहीं निकाला, जाने नहीं दिया कभी, तो उसकी प्रत्यक्षता का मूल्य का अब मूल्यांकन करते हैं क्या, इसको पूछे जो परोक्ष है वो आपको प्रत्यक्ष तुल्य है, तो प्रत्यक्ष हो तो कोई फर्क पड़ता है।